चैप्टर 17 देवांश की ऑफिस में दिशा को उसी तरह खड़े रहते हुए 50 मिनट हो गए थे। वे अपनी नजरें नीचे कर खड़ी थी। उसने एक बार भी देवांश की तरफ नहीं देखा। एक ही जगह पर उसी पोजीशन में खड़े रहने से उसके पैरों में भी काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी वे कुछ नहीं बोलती और उसी तरह खड़ी रहती है, क्योंकि वे अपने बॉस के गुस्से के अच्छी तरह से वाकिफ थी। वहीं देवांश की नजरें अपने काम के ज्यादा दिशा पर बनी हुई थी। वे दिशा की एक एक हरकत पर नजर रख रहा था। उसकी नजर दिशा के हल्के कांपते पैरों पर गई, जिसे देख वे अपनी चेयर से खड़ा वो दिशा के पास आने लगा। वहीं दिशा, जो चुपचाप अपनी सजा पूरी कर रही थी, वे देवांश को खड़ा होते हुए देख डर जाती है। वहीं देवांश दिशा के करीब आ उसके बगल से चला जाता है, पर उसने दिशा के चेहरे पर डर नोटिस कर लिया था, जिसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वे यही तो चाहता था कि दिशा के अंदर उसके लिए थोड़ा बहुत डर बना रहे। वहीं दिशा देवांश को अपने बगल से जाता देख चैन की सांस लेती है। वहीं देवांश अपनी एक फाइल वापस अपनी चेयर के पास अपना काम करने जा ही रहा था कि उसकी नज़र दिशा के बैक पर चली जाती है, जिसे देख देवांश धीरे धीरे दिशा के पास आ उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। फिर वे धीरे से दिशा के खूबसूरत बालों को अपने हाथों में आराम से लेता है और उसे अपने चेहरे के करीब ला उसे सूंघने लगता है। इसी के साथ उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और वे दिशा की खुशबू में खो सा जाता है। कुछ देर यूं ही दिशा के बालों से खेलने के बाद देवांश दिशा के बालों को छोड़ दिशा के दुपट्टे को अपने हाथों में ले दिशा के दुपट्टे को अपने होठों से चूमते हुए अपने मन में कहता है, गुड गर्ल, जिस तरह आज मैं तुम्हारे इन दुपट्टे को चूम रहा हूँ, एक दिन ऐसा होगा जब इन दुपट्टे की जगह तुम्हारे गुलाबी होठ होंगे, जिन्हें मैं पूरी शिद्दत के साथ चूमूंगा। इतना सोच वे खुद में ही मुस्कुराने लगता है। वहीं दिशा, उसे अपने दुपट्टे में थोड़ा खिंचाव महसूस होने लगता है, जिसे महसूस कर वे डर जाती है और तुरंत पीछे पलटने को होती है, मगर वे पलट पाती उसके पहले ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वे गिरने तो होती है, लेकिन देवांश उसकी कमर को पकड़ उसे संभाल से खड़ा करते हुए अपनी सीरियस टोन में पूछता है, मिस दिशा, क्या आप ठीक हैं? देवांश की बात सुनकर दिशा अपना सर हिलाते हुए कहती है, जी सर, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। सर, क्या आप, मैं जाऊँ अपना काम करने, क्योंकि मेरी सजा पूरी हो गई? देवांश की बात सुनकर देवांश अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, ओके, जाओ और मुझे मीटिंग के लिए रिपोर्ट करो। देवांश की बात सुनकर दिशा तेजी के देवांश के कैबिन के बगल वाले कैबिन में चली जाती है और तुरंत जा अपनी चेयर पर आराम से बैठ जाती है। फिर अपनी चप्पल उतार अपने पैरों को दूसरे चेयर पर रख अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पैरों को दबाने लगती है। वहीं देवांश अपने कैबिन में बैठा दिशा की एक एक हरकत को देख रहा था, क्योंकि देवांश ने दिशा के कैबिन में CCTV लगा रखा था, जिसके वे उस CCTV को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिशा की हर एक हरकत को नोटिस करता रहता था। वहीं दिशा कुछ देर अपने पैरों को दबाने के बाद अपने काम में लग जाती है, क्योंकि उसे अभी देवांश को मीटिंग की रिलेटिव अपडेट भी देनी थी। इसी तरह काम करते करते ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है और दिशा अपना पर्स ले ऑफिस से निकल जाती है। कुछ देर बाद दिशा अनाथाश्रम पहुंचती है और अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि रूही पहले ही वहां पर सज सवर कर बैठी हुई है, जिसे देख दिशा आराम से सोफे पर बैठते हुए रूही को देख बोली, रूही, तू इतना तैयार होकर क्यों बैठी है? तू कहीं जा रही है क्या? दिशा की बात सुनकर रूही तुरंत दिशा के पास आ उसके बगल में बैठते हुए तपाक से बोली, दी, मैं नहीं, हम जा रहे हैं। मेरा मतलब कि आप मेरे साथ चल रही हो गोलगप्पे खाने, क्योंकि मुझे आज गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना टाइम हो गया है ना दी, हमने साथ में गोलगप्पे नहीं खाए, चलिए आज खाकर आते हैं। रूही की बात दिशा मना करते हुए बोली, रूही, फिर कभी चलते हैं ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। दिशा की बात सुनकर रूही रोने जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, दी, प्लीज चलो ना, हम कहीं पास में ही खाकर वापस आ जाएंगे, प्लीज दी, चलो ना, प्लीज दी, प्लीज। रूही की बात सुनकर दिशा हार मानते हुए बोली, अच्छा बाबा, चल, तू अपनी जिद मनवा कर ही रहती है। इतना बोल भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वहीं रूही दिशा को जाते हुए देख बोली, दी, मैं तो हूं ही बेस्ट, और अगर मैं आपसे भी अपनी बात ना मनवा पाऊं तब तो बेकार ही है मेरा होना। इतना बोल वे खुद में ही हंसने लगती है, पर उसकी असली खुशी का कारण तो यही था कि उस साइको की शादी लग गई है। रूही इसी बात से खुश थी और उसका आज पार्टी करने का मूड था, इसलिए वे दिशा को जबरदस्ती मना लेकर जा रही थी। दिशा फ्रेश होकर आती है, उसके इस समय ब्लैक कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी, साथ में लाल दुपट्टा लिया हुआ था जिसमें थोड़े बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, जिसके उस दुपट्टे की खूबसूरती के साथ साथ दिशा की भी खूबसूरती बढ़ गई थी। दिशा जल्दी से अपनी आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्का सा पिंक लिप बोम लगाती है और कानों में बड़े बड़े झुमके वाली बाली पहन बालों को यूं खुला छोड़ रेडी होकर अपना पर्स उठा रूही को देख बोली, रूही, चल, अभी रात होने वाली है, हमें उसके पहले ही अनाथाश्रम वापस आना है। वहीं रूही जब दिशा को देखती है तो वे तुरंत दिशा के पास जा अपने हाथों से दिशा की नजर उतारते हुए बोली, दी, आपको किसी की नजर ना लगे, आप सच में बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल किसी परी की तरह। दिशा की बात सुनकर रूही मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे कई ज्यादा खूबसूरत तू लग रही है, तुझे भी किसी की नजर ना लगे। दिशा के इतना बोलते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी के साथ रूही और दिशा गोलगप्पे खाने के लिए मार्केट में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र एक क्लब के प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था।
उसी के साथ उसका असिस्टेंट अमन भी था। वहीं रुद्र के साथ बैठे सभी बिजनेसमैन के चेहरे पर पसीने की बूंदे थी, क्योंकि रुद्र ने उनके सामने इस तरह का प्रपोजल रखा हुआ था कि अगर वे रुद्र को ना तो हाँ बोल सकते थे ना ही ना, क्योंकि उन्होंने अगर हाँ बोला तो उनके बिजनेस का डूबना निश्चित है और ना बोला तो उनकी जान एक झटके में ही चली जाएगी, क्योंकि वे रुद्र को अच्छे से जानते थे। जो उसकी बात नहीं मानता वे सीधे ही इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए सब काफी परेशान नजर आ रहे थे। तभी उस मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और एक खूबसूरत सी और हॉट सी लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन अपने हाथों में वाइन की बोतल लिए सीधा रुद्र के पास आ उसे ग्लास में वाइन सर्व करते हुए उसकी गोद में बैठ उस ग्लास को उसके होठों से लगा देती है।
वहीं रुद्र उस लड़की को अपनी गोद में बैठता हुआ देख और वाइन अपने होठों से लगाता हुआ देख गुस्से से उस लड़की को धक्का दे देता है, पर वे लड़की खुद को संभाल दोबारा रुद्र को सेड्यूस करने लगती है।